पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय पेपर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अध्याय 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित होने की घटनाएं परिस्थितियां और कारण 1861 के एक्ट के पारित होने के पीछे। पहला, शासक शासित संपर्क की आवश्यकता। 1857-58 के महान संकट के पश्चात शासक वर्ग था इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों ने इस तथ्य का अनुभव किया कि भारत के प्रशासन तथा संविधान में गंभीर परिवर्तनों की आवश्यकता है, विशेषकर भारतीय लोकमत से निकट का संपर्क स्थापित करने की। इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने की विसर्जनक व्यवस्था जिसमें उनकी सहमति अथवा असहमति को विद्रोह के अतिरिक्त किसी अन्य रूप से जानना संभव भी नहीं था को त्यागना ही पड़ेगा। बम्बई के गवर्नर बार्टल फेयर ने इस दृष्टिकोण में कोई इन शब्दों में व्यक्त किया था, जब तक आप अपने पास कोई वायु मापक यंत्र अथवा सुरक्षा का पाठ के रूप में एक विचार विमर्श परिषद नहीं होगी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इसी प्रकार का स्पष्ट व्यापक विस्फोट से साक्षात्कार होना ही पड़ेगा। लगभग इसी प्रकार के भाव सर सैयद अहमद खान जैसे व्यक्तियों ने भी व्यक्त किए थे और कहा था कि 1857-58 की घटनाओं का एक मुख्य कारण शासक और शासित वर्ग के बीच संपर्क का अभाव था। 1858 में यह कहा गया था कि भारतीयों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, परंतु यह कहा गया कि यदि वह थोड़ा सा है तो इसमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा, यदि अधिक होगा तो उसको बेहद कमजोरी समझा जाएगा, विशेषकर 1857-58 के विद्रोह के पश्चात। अतः जब तक पूर्णतः शांति हो जाए तब तक के लिए भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उठा दिया गया। दूसरा, विधान विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। 1853 के चार्टर एक्ट ने भारतीय विधि बनाने की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। केवल केंद्रीय विधान परिषद को ही समस्त देश के लिए विधि बनाने का अधिकार था, सभी छोटे बड़े कानून वही बनते थे, परंतु इस विधान परिषद के लिए इतने विस्तृत प्रदेश में विभिन्न लोगों की स्थानीय अवस्था था, आवश्यकताओं को जानना संभव भी नहीं था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार था मद्रास की सरकार में आयकर संबंधी विधेयक पर अत्यधिक गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। तीसरा, केंद्रीय विधान परिषद के कार्यकरण से असंतोष। 1853 के एक्ट द्वारा स्थापित विधान परिषद में बहुत त्रुटियां रह गई थी। अंग्रेजी सरकार की इच्छा के विरुद्ध यह परिषद एक प्रकार की वाद विवाद सभा अथवा एक छोटी संसद ही बन गई थी। इसमें एक प्रतिनिधि सभा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार अपना लिए थे। उसने संसद की कानून बनाने की व्यवस्था, विधेयक के तीन पठन तथा समितियों को सौंपने इत्यादि की प्रथा अपना ली थी। इसे विधेयक पारित होने में बहुत देर लग जाती थी। एक स्वतंत्र विधानमंडल के रूप में कार्य करने के प्रयत्न में वह कई बार ध्यान भी नहीं देती थी तथा सदैव वह गृह सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य ही नहीं करती थी। सदस्य प्रश्न ही पूछते थे तथा कई बार भारत सरकार को गुप्त विषय पर प्रश्न पूछकर उसे कठिनाई में डाल देते थे। इंग्लैंड में स्थित अधिकारी ने इस समस्त समस्याओं को हल करने की ठान ली। संभवतः 1853 के 8 वर्ष पश्चात इस व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण यही था। अतः भारत सरकार था गृह सरकार के बीच पत्र व्यवहार होने के पश्चात 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किया गया। एक्ट 1861 की धाराएं। इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। इससे पूर्व यह सदस्य का केवल कानून बनाने समय ही परिषद में सम्मिलित करना आवश्यक था, अन्य कार्यों के लिए परिषद की बैठकों में इसे सम्मिलित करना वैकल्पिक था। अब यह सदस्य अन्य सदस्यों की भांति पूर्ण रूप में परिषद का सदस्य था। इस व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि वह विधि वृत्ति का व्यक्ति हो, एक विधि नेता न हो कि एक वकील। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह परिषद में अधिक कार्य क्षमता तथा सुविधा के लिए नियम बना सके। इस अधिकार के प्रयोग से कैनिंग ने भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न कार्यकारी परिषदों को दे दिए और भारत सरकार में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। उसके पूर्व सभी कार्य परिषदों के संयुक्त रूप से देखने होते थे। परिषद गवर्नर जनरल को इस बात की अनुमति दे दी गई कि वह परिषद के किसी भी सदस्य को अपनी अनुपस्थिति में परिषद की बैठकों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सके। मंत्री स्वपरिषद गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वह विधि तथा विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर शेष अपनी समझ सकते हैं केवल गवर्नर जनरल को ही दे सकता, अर्थात अब गवर्नर जनरल पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत रूप से ही निर्णय ले सकता था। कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से इसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा तथा उनके कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित किए गए। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि इनमें से न्यूनतम 50% सदस्य अशासकीय होंगे। यद्यपि भारतीयों की नियुक्ति के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ उच्च श्रेणी के भारतीयों को अशासकीय सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। इस विधान परिषद का काम केवल कानून बनाना ही था, इसका प्रशासन वित्त अथवा अन्य कार्य में हस्तक्षेप अथवा करने प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। सन 1853 के एक्ट के अनुसार बने हुए इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रत्युत्तर अथवा प्रतिस्थापन नहीं था, यह एक प्रकार से उनका व्यवस्थापन था। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों की सरकारों को अपने प्रदेश के लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का पुनः अधिकार मिल गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों का भी विधान परिषद के लिए केंद्र पद्धति के अनुसार ही विस्तार किया जाएगा। प्रांतीय गवर्नर को यह अधिकार दिया गया वे प्रांतीय महाधिवक्ता को तथा न्यूनतम 4 और 8 अतिरिक्त सदस्यों को विधान उद्देश्यों के लिए मनोनीत कर सके। वहां भी यह व्यवस्था थी कि इनमें से न्यूनतम 50% सदस्य अशासकीय होंगे। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह बंगाल प्रेसिडेंसी तथा उत्तर प्रदेश में परंतु आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए भी अलग से विधान परिषद स्थापित करे। इस प्रावधान के अनुसार 1862 में बंगाल के लिए, 1882 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1857 में प्रांत पंजाब के लिए अलग से विधान परिषद गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। और आगे